जो गोपियां कृष्ण में सभी मिल गई, जिसने ठाकुर को प्रवचन देने वाले हुए थे। दूसरे नंबर श्लोक में भागवत के लिए बताया गया है, धर्म प्रोक्षित कई सबो और धर्म प्रोक्षित कई सबो अस्त्र। इस भागवत में जीवों के किसी भी कपट धर्म का समर्थन नहीं किया गया, बल्कि उसको जड़ से काम किया गया। कपटता क्या है उसको अगले भगवत के श्लोकों से बताया गया। पुत्र पुत्र परिवार धन संपत्ति और साइड में बैठ गए, उनको ऐसे करने में गड़बड़ हो।
दूसरा श्लोक बता,
भागवत में जीवों के लिए कोई भी कपटता की बात इसमें नहीं कही है। हमारे जितने भी टीकाकार हैं बड़े बड़े जो सर्वज्ञ हैं, व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, इसके बाद में और जो टीकाकार हैं, उन सब में चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। उन्होंने देश श्लोक के भी कहा, सबने कहा कि कपटता होती है क्या, एक जान बुझ कर कपटता होती है और एक कपटता कुछ रहती है। भगवान को छोड़ करके, भगवान के प्रेम को छोड़ करके संसारी किसी प्रकार की अभिलाषा हो, पाने की इच्छा हो, जैसे रुपया पैसा, हम इसी के लिए चेष्टा करें। इज्जत है, मान प्रतिष्ठा है, इसको हम चाहते हैं। कभी कभी हम धन नहीं चाहते, हम चाहते हैं मान प्रतिष्ठा। जैसे गांधी जी, उन्होंने कभी धन संग्रह किया किंतु मान सम्मान, एक अफ्रीका में जाकर के गंदी नाली भी साफ की कि उनका देश स्वतंत्र हो सके। यहाँ पर भी ऐसे कि अंग्रेजों ने कितनी उनको कष्ट दिया, इसको सहज कर दिया न। आज गांधी का नाम भारतवर्ष में किस प्रकार का है, विश्व में भी है, ये प्रतिष्ठा है। तो लोग पैसा भी नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कि अपने घर को बर्बाद भी हुए देख लेंगे किंतु प्रतिष्ठा को कभी नहीं मिला। तो ये सब चीज है कपटता। कपटता माने क्या, जो चीज हमारे लिए उपकारी नहीं है ये चीज है। मुक्ति की कामना को भी उन्होंने सबसे बड़ी कपटता कहा। मुक्त चीज को कहते हैं आज तो हमारा सुप्रभात है, सुप्रभात। आप सब कुशल हैं? अरे भाई इनको कोई आसन तो दो, साधारण आदमी नहीं है, मंत्री ही नहीं है, महामंत्र है, महामंत्र। ये बिगड़ जाएंगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इनकी कृपा कटाक्ष नहीं होने से ना देखिए
क्या वाले नहीं आए
महाराज, बोले थे ना लाएंगे। तबियत ढीली सी लग रही है
अपने
घर
लाने के लिए।
अच्छा, इस प्रसंग को मैं 2 मिनट में समाप्त करूँ। इस प्रसंग से लिया कपटता क्या चीज है जो हमारे लिए उचित नहीं है, उसको हम करते हैं। जैसे आपके ये मित्र हैं, आपने इनका कुछ रुपया ऐंठने के नियत से आप इनके मित्र बन करके और रुपया किसी ने किसी चलाके से निकाल दिया, ये क्या चीज है? भीतर में एक भाव रखा और बाहर से आपके इनके मित्र बन करके इनके भीतर में प्रवेश कर गए, इनको समझ ही नहीं दिया और इनका सर्वस्व ले, ये कपटता है। तो ऐसे थे जीव का स्वरूप भगवान का दास है, उस चीज को भगवत प्रेम को छोड़ करके सबसे ही जगत में कपटता है। मुक्ति की अभिलाषा भागवत में लिखा है, विमानम न गृहंती बिना मत सेवनम जना, भगवान मुक्ति देते हैं किंतु भक्त लोग उल्टी भी आंखों से भी उसको नहीं लेते, प्रभु नहीं दे ऐसे कहते हैं, उस पर दृष्टि न पड़ जाए। भगवान भी दे रहे हैं नहीं लिया, प्रहलाद महाराज ने लिया और भक्त लोग नहीं लेते। मुक्ति मैंने क्या है, सांसारिक कष्टों से दूर होने का नाम मुक्ति ही तू, अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यक्ति मुक्ति। हमारा स्वरूप है कृष्ण का साथ आत्मा इसके अंदर, अभी इसके ऊपर में शरीर माया का और मन माया का ऊपर से लपेट रखा है। अब उसके वजह से हमने शरीर को समझा कि मैं हूँ और शरीर के बच्चों को समझा कि ये हमको कष्ट देने वाले कुछ है और कुछ प्यार करने वाले, इसमें राग और देश आ गया। ये हमको प्यार करने हमारे अनुकूल है और ये हमारे प्रतिकूल है, ये सब हमने आई, इसलिए प्रतिकूल के प्रति में प्रिय आचरण करते हैं अनुकूल के रूप में और प्रतिकूल वालों पर देश भाव सभी ऐसी भावना, क्योंकि इसी से बड़ी भयंकर एक चीज है, जन्म मरण में बहुत दुख और क्लेश है। कोटि कोटि जन्मों से हम भगवान से बिछुड़े हैं, एक दो जन्म में कब से अनादि काल से, जब से हमारी सृष्टि हुई है जब तक के समय आरंभ नहीं हुआ था ये तभी से, कभी हम भगवान की सेवा में थे नहीं, कभी नहीं थे। जब भी कोई भगवान की सेवा पा लिया तो उनसे विच्युति होने की कोई संभावना नहीं, कभी नहीं। इसीलिए ये बतलाया एक उदाहरण के द्वारा, प्रादेशिक उदाहरण कहते हैं। एक आदमी था बड़ा दरिद्र था, बहुत दरिद्र, लड़का था अभी 20-25 वर्ष का, बड़ा दरिद्र था, घर में खाने पीने का कुछ नहीं। एक ज्योति आया, अगर मैं ज्योति जानता हूँ तुमको तो दरिद्र होने की कोई संबंध नहीं, तू तो बड़ा धनी आदमी है, तुम्हारे पास में घर में बहुत रुपए पैसे हैं, सोने के सिक्के बहुत से गड़े हुए, अगर मैं तो खाने के लिए इधर उधर करता हूँ, बहुत दरिद्र व्यक्ति हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे छोटेपन में ही जब तक तुमको होश नहीं था तेरे लिए बहुत रुपया रखा था, किंतु वो दूसरी जगह चले गए और वहीं पर मर गए, इसलिए तुमको वो पता नहीं चला, किंतु है इसी घर में। यदि इस घर में तुम खोदोगे बिना किसी से पूछे हुए किसी से बतलाए हुए, यदि पश्चिम में तुम खोदेगा तो क्या होगा, अभी तुम एक जब से निकल करके तुम्हें निकल जाएगा, मार डालेगा। यदि दक्षिण में कूदेगा तो हड्डियां मैंने वो पीली पीली सतैया तुम्हें काट करके तुम्हें नष्ट कर दे, मर जाएगा। और इधर यदि गया बाएं तरफ तो एक सर्प है काला, बहुत अधिकार तुम्हें निकल जाएगा। और ये देखो पूरब में, ये देखो ये स्थान देता बतला देता, थोड़ी सी खोदो और यहाँ पर देखो तो क्या है, उन्होंने जैसा निर्देश करके पहले यहीं पर खोदो, तो उसने थोड़ी सही खोदा, उसने देखा कि एक सोने के कलश में सोने की अस्थियां भरी हैं। अच्छा, उसने ये उदाहरण से समझिए, सती व्यक्ति को कभी वो धन प्राप्त था जिसे वो भी छुट गया, आखिर नहीं धन को देखा था कभी नहीं देखा, उसके पिता ने उसके लिए धन कर, इसलिए उसकी आत्मा ने भगवान ने इस यहाँ पर रखा है, क्योंकि उसको पता नहीं था अनादिकाल से ही, ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा को प्राप्त था और वो फिर पीछे देते हैं। उदाहरण समझ में आ रहा है, धन तो उसके स्वरूप में है, किस कैसे दूसरा आदमी कोई कह दे जैसे मैं उसका बेटा हूँ, कर सकता है, वो बेटा ही पाएगा, समाज के लोग एकत्रित होंगे नहीं इसके घर में है, इसका बाप ने रखा था, इसे सब लोग कहेंगे नहीं इसको मिले, और दूसरा आदमी कह दे नहीं इसके घर में गड़ा हुआ है तो क्या है ये मेरा, कहेगा उत्तराधिकारी वही बच्चा है क्योंकि बाप का बेटा है, इसलिए उसको ये है, किंतु कभी भी उसको धन नहीं मिला न कभी उसका अनुभव किया, इसके विस्मित का ये वहाँ पर कृष्ण भूली के जी अनादि बहरी, इसका ये तात्पर्य है। अनादि काल में जब से उसका जन्म हुआ, जब से उसका प्रकट हुआ, कभी उस दुख को अस्पताल में भगवान को कभी नहीं देखा, उनसे उनका कभी रियलाइजेशन नहीं था। इसलिए जो ही उससे योग हुआ है उससे आत्मा में बीज रूप में सभी पोटेंशियां हैं, किंतु उसको पता नहीं। कोई सर्वज्ञ आया, सर्वज्ञ माने तीन, एक शास्त्र, एक गुरु और कृष्ण। गुरु डायरेक्ट रूप में उसको उपदेश देगा, शास्त्र में वो दिखाया किंतु गुरु के बिना समझ में नहीं आया, और कृष्ण आत्मा के रूप में उसको अंतर्यामिक रूप में प्रेरणा दे, देखो ये गुरु हैं, इनके पत्नियों में विश्वास रखो, और ये भागवत ग्रंथ है या शास्त्र है इस पर विश्वास रखो। तब वो गुरु के समीप जाएगा, फिर उस श्रद्धा को वो लोग देख रहे, तब फिर भजन करते 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 वो सारा धन जो गड़ा हुआ है पोटेंशियल के रूप में है, वो सब हो जाएगा। ये है प्रेम का प्रयोग, हम लोग हैं उसके अधिकारी, किंतु कभी अभी देखा नहीं, उपलब्धि नहीं, तो फिर भूलेंगे। अब जब भी उसको मिल गया ये धन, कभी जन्म जन्मांतर में अब नहीं। इसलिए कहते हैं कि जब भी आत्मा में एनिहिलेशन हो जाए, मिल जाए, एक हो जाए, शास्त्र में कहीं लिखा है, यदि उसमें प्रवेश करता है, जतो इमानी भूतानी जायन्ते येन जातानि जातानि जीवन्ति अभिसंविशन्ति, अभिसंविशन्ति विशन्ति माने मिलना। मिलना कैसे, बात से हम लोग यहाँ पर दो चार छः दो आठ दस बारह आदमी हैं, बात से दिखता है कि नहीं, वो बात से देखेगा कि यहाँ पर कितने घर में आदमी हैं, वो देखेंगे मकान को, आदमी को नहीं देखेंगे। उसी प्रकार से भगवान के साथ में कोई जब भी मिलता है, इसको कहते हैं योग मिलने को, यूनिटी, और ये सब एक नहीं हो जाता, किंतु मिलते हैं। इस मिलने को तरह तरह से लोग व्याख्या करके लोगों को मिलना तो ठीक है, मिलना कैसे, पति और पत्नी मिले, भाई और भाई मिले, माता और पिता मिले, ऐसे मिलना है भगवान के साथ में, मिल करके एक नहीं, कोई चीज मिलती नहीं है। कैसे, भागवत का कहें नहीं मिलती। कृष्ण के साथ में जितने सखा थे, सखियां थी, माता पिता, सब कृष्ण में मिल गए, उनसे किसकी भक्ति हो सकती है, बात हो सकती है, क्योंकि जब वही नहीं मिले तो वो अब दूसरे कैसे मिलेंगे। भागवत में ऐसा कोई भी प्रमाण है जिसके द्वारा कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति भगवान में मिल गया? अजय, हाँ एक उदाहरण है, कौन सा, शिशुपाल को उन्होंने मारा, उसकी ज्योति उसमें मिल गई, कहेंगे देखो वो तो जय विजय होकर के उनके अंदर में प्रवेश किया, और जब लीला समाप्त हुई जय विजय के रूप में चला गया, तो मिला कहाँ, सब भी ऐसे ही जाते, कोई भी उनमें मिल करके वो नहीं हो सकता, क्योंकि भागवत में ऐसा कोई भी दृष्टान कोई भी उदाहरण नहीं। लोग गलती से और अपने बल पर ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये बात ठीक नहीं, सबको उसमें धिक्कार दिया गया। कहते हैं एक श्लोक है, जो लोग भगवत भक्ति को छोड़कर और आत्मबोध के लिए चेष्टा, आत्मबोध माने मैं ब्रह्म हूं चेष्टा करते हैं, क्योंकि यह परिश्रम भूसी को कूटने के समान है, भूसा माने पुआल को कूटने में लाख जन्म तक तो एक चावल का दाना नहीं है, ऐसे बेकार का, और भक्ति ऐसी क्रिया है उसमें चावल भरा हुआ थोड़ा सा भी पूछो तो उसमें चावल दिखा रहा है, इसलिए उधर में मत जाओ। गीता में देखिए, गीता एक सब ग्रंथों की सार है, उसमें लिखा है जो लोग अव्यक्त आसक्त की तथा, जो लोग अव्यक्त में अनादि में जिनका निराकार में ध्यान लगता है, इसमें केवल दुख ही दुख प्राप्त होता है, उसमें सुख नहीं होता है। तो अधिकतर तेषां अव्यक्त आसक्ति के प्रकार निराकार निरंजन में जो कि वो करते हैं, निराकार चीज है क्या, कृष्ण के चरण कमल की नख की कांति को निराकार ब्रह्म कहा गया, जस्य प्रभाव प्रभाव से इत्यादि लोग इस चीज को समझते नहीं, कृष्ण को ही निराकार मानते हैं, क्योंकि वो दिखते नहीं, दिखेंगे तो साधन के द्वारा भजन के द्वारा दिखेंगे, वो करते हैं। इसलिए भागवत का ये कभी विचार नहीं है, गीता का प्रचार नहीं है। गीता में कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान फलते, योग जप जाप ये निर्विशेष बात और द्वैतवाद सबको छोड़ छाड़ करके हमारे सर कैसे कहते हैं, ऐसे माम एकम, कौन माम मैंने ये अंगुली के द्वारा विचार करते अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं तुम हमसे मिलने की चेष्टा मत करो, तुम मिल नहीं सकते हमने। अच्छा देखिए पानी में पानी मिलता है कि नहीं, मिल जाता है ना, उसको अलग नहीं किया गया। समुद्र में दस घड़ा पानी डाल दो तो मिल जाएगा ना, आप नहीं निकाल। एक ग्लास पानी में एक ग्लास पानी मिला दो क्या होगा, मिल जाएगा ना, तो मिल जाएगा तो एक कहाँ होगा, गिर गया। जब ही मिल गया होता पानी में पानी से एक ग्लास पानी फुल ब्रिम में भरा हुआ है और एक ग्लास और पानी ले लो उसमें डालो तो मिल गया, तो फिर गिर कैसे गया, इसलिए वो मिलता नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता। कितनी एक बहुत मरुभूमि है ना, मरुभूमि कहीं से एक किसी की बालू ले आओ और उस अरब के रेगिस्तान में या थार डेजर्ट में जो बालू पड़ी हुई है उसमें कोई बालू लेकर के मिला दो, मिल गई ना, अब उसको निकाल सकते हैं, तो मिल गई ना, उसमें एक हो गई ना, नहीं हुई, उसकी संख्या बढ़ गई। वो इतने दूर इतनी तादाद में नहीं समझ में आता, किंतु इतनी धूल में इतनी और धूल मिला लो तो मालूम होगी कि नहीं नहीं मिल गई, वजन भी बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगी। इसलिए वो नहीं समझना, ये बुद्धि की कमी है, इसलिए कोई भी चीज किसी चीज में नहीं मिलती। एक में एक लगाओ तो कितना होगा, शंकराचार्य कहते हैं कि एक होगा, और रामानुज वैष्णव विष्णु स्वामी चैतन्य महाप्रभु शास्त्र गीता भागवत क्या कहती है, एक में एक मिलकर के दो होगा। एक समय शंकराचार्य जी जब छोटे से बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे, मैया ने कहा कि देखो ये अतिथि आ गए हैं, बैंगन हमारे खेत में पड़े हुए हैं, काफी बैंगन हजारों बैगन हैं, उसमें से कुछ बैंगन ले आओ इनकी सब्जी बनाएंगे। तो शंकराचार्य जी गए और जा करके एक बैंगन तोड़ करके गया, मैया ने कहा कि बेटा एक ही बैंगन तो, मैया एक ही बैंगन था तो क्या चोरी हो गया, क्या डर गई कि चोरी हो गया, तो चोरी तो नहीं हुई, तो बैंगन तो बैंगन तो एक ही मैंने देखा, कभी चलो तो देखें। देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, बच्चा क्या पढ़ता है लिखता है, मूर्ख है ना क्या है। उसने कहा कि बेटा ये बैगन तो बहुत देख रहा हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात हजार इतनी हजारों बैगन का, मैया उन्होंने कहा नहीं मैया एक 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 जी एक ही थे, मैया ने उसका काम ऐसा पढ़ा ऐसा, एक के बाद में दो होता है ना, तीन होता है, तो तुम एक दो तीन तुम्हारे मास्टर ने पढ़ाया नहीं वो कहता है एक तो एक एक की गिनती ही सब अंतिम है, या एक के बाद में दो तीन चार पांच ये होगा। तो ऐसे ही मायावाद और सत्य के ऊपर में टिका हुआ है, इसका कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए मायावाद का यदि कोई थोड़ा सा भी भ्रम हो उसको लिख फूट करके उसको दूर करके भगवान की भक्ति में प्रवेश करने की चेष्टा करें। बन गया है तो चलिए वहाँ पर व्यवस्था कीजिए, आज महामंत्र जी का महामंत्र कीर्तन होगा। आज बहुत दिनों के बाद में आपने दर्शन दिए हमको, कहाँ आए वृंदावन, आपने कभी गोवर्धन को खाली नहीं किया, कहाँ
तो करें वहाँ पर लोकल लोग,
आप नहीं जाएंगे कुछ नहीं होगा, वो चला वकीलों का काम है, दूसरों से नहीं होगा। सचिव बुद्धिमान कानून को जानने वाले जो हाँ को नहीं और नहीं को हाँ करते तो आपके बिना काम नहीं, अभी लक्ष्य पस्त नहीं चल रहा, कोई काम नहीं है। ये राज्य और समाज कृष्ण जी बहुत चेष्टा कर रहे हैं, हम ठीक में वो गए थे ना करते हैं, अभी कुछ हुआ नहीं, चलिए नीचे और कृष्ण की व्यवस्था करें।
जिससे हमारे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो एक गृहस्थ को एक सन्यासी इस तरह से सत्कार कर रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ गृहस्थ विभूति होगी, पहली झलक में हम लोगों का जो पुराना संबंध था वो एक दूसरे के प्रति आकर्षण का कारण बना, और वो तो बहुत शुरू का इतिहास था, बात है प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे मथुरा आगमन पर जब भी जाते थे स्वामी जी के गुरु महाराज को मिलने के लिए तो हमेशा इनका उनका सामने चलाता था। यहाँ तक कि जब कभी प्रभुपाद जी ने संन्यास शिक्षा लिया तो नारायण महाराज जी पुरोहित कथा संभाले थे, इसलिए हमारे गौरी वैष्णव परंपरा में हमारे इस काम आंदोलन के साथ नारायण महाराज का बहुत ही अंतरंग और घनिष्ठ संबंध रहा है रहेगा। यह बहुत ही गर्व का विषय है। महाराज जब भी हम लोगों को विशेष सहायता और जरूरत पड़ती है मुंबई में वृंदावन में दिल्ली में हर जगह दर्शन देते रहते हैं और जो भी हम उनसे प्रश्न करते हैं उसका समाधान करते हैं। तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आज महाराज जी को सुनने का मौका मिला है। रामचंद्र प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मुझे कल शाम को ही बता दिया था। जब महाराज कई बार से मिले तो गुरु के मुख से निकली हुई आवाज को अगर कोई व्यक्ति हृदयंगम कर ले जहाँ पर यह विशेष बात है केवल यह गौरी वैष्णव परंपरा है जहाँ गुरु का बहुत निश्चित अर्थ है। दूसरे जो मायावादी लोग हैं या जो अनर्थवादी लोग हैं वो गुरु किसी एक व्यक्ति को स्थान की तरह लेकर बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, लेकिन अगर हम गुरु वंदना पढ़ते हैं तो गौरी वैष्णव परंपरा का ये एक आदर्श रहा है। गुरु वैष्णव वंश कभी गुरु अकेला नहीं होता, गुरु हमेशा अपने गुरु और संपूर्ण आचार्य मंडल के साथ होते हैं। इसी दौरान महाराज ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के गुरु है, आप जो गुरु है हमारे गुरु नहीं है, बल्कि एक गौरी वैष्णव जो परंपरा है उस आचार्य प्रवर लोगों के एक प्रतिनिधि है। तो उनके मुख से जो आवाज जो आज्ञा जो आदेश निर्देश निकलता है उसका एक बहुत ही व्यवहारिक और आवश्यक अंश यह है कि हम उसे अच्छा रूप स्वीकार करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाए।
महामंत्री जी ने हमारा कुछ परिचय कराया, उसमें कुछ अंश तो ठीक है और कुछ हमारे लिए अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति तो यह मैं ना कोई आचार्य हूँ ना मैं कोई भक्त हूँ न वैसा कुछ हूँ, और सब तो मैं यहाँ तक है और सबसे यह कि हमारे बुद्ध स्वामी जी भक्ति वेदांत स्वामी जी जिन्होंने विश्व में हरिनाम का प्रचार किया है, अपने गुरु जी का आदेश पालन करके विश्व में सर्वश्री शिक्षा भक्ति का प्रचार किया है, हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल ग्रंथ भागवत और गीता इत्यादि ग्रंथ हैं उनका विश्व में सब जगह प्रचार किया, नहीं तो विश्व के लोग इन चीजों को गीता भागवत नाम की क्या चीज है नहीं जानते, कृष्ण क्या चीज है, रामचंद्र जी क्या है, उनके उपदेश क्या है, आत्मा क्या है, ये लोग नहीं जानते। आज भक्ति के बदौलत विश्व में सर्वश्री आज किसका आदर हो रहा है, लोग जाने कि गीता और भागवत क्या चीज है, इसमें कौन सी चीजें हैं ये लोग जानते हैं। उन्होंने कृपा करके हमें कुछ सुजोग दिया था, अपनी सेवा का कुछ अवसर दिया था, वो भी हमारे गुरु जी के नाते, और उन्होंने जो सेवाएं हमसे ली हमने उसको आंतरिक रूप में उनको प्रदान की। अमेरिका इत्यादि देशों में बहुत सी चीजों की आवश्यकता पड़ती थी, यहाँ तक की साधारण चीजें भी मृदंग सवतार, यहाँ तक की स्वादिष्ट मथुरा का प्रसिद्ध पेड़ और सब चीजें हमने उनको भेजी, उनके सारे ग्रंथ यहाँ से हमने भिजवाए और कभी कुछ वहाँ पर होता था, कैसे उसकी स्थापना हुई, विश्व में कैसे लोग उनके प्रति आकृष्ट हुए, वो सब समय बीच बीच में हमको पत्र दिया करते थे, मैं भी उनको पत्र दिया करता था। तो इस तरह से हम लोगों का अंतिम तक संबंध रहा और अंत में उन्होंने हमको बुला करके अपने जाने से एक दिन पहले हमको विशेष रूप से बुलवा करके कहा कि हमारी समाधि आप ही के हाथों से होगी, आप समाधि हमारा हमारा बुरा उत्सव आप ही कराएंगे। और इन लोगों को, नए लोगों को मैं पिता दर से जो लाया हूँ, ये लोग आपके पास में जाए और आप उनको जहाँ तक हो सके कुछ सहायता करें। बहुत से मेरे लिए उन्होंने कहा, मैंने जहाँ तक हुआ मैं उनकी सेवा को अंतरतम हृदय से मैंने पूरा करने की चेष्टा की, अभी भी चेष्टा करता हूँ। कोई हमको भूल समझे अथवा किसी रूप में समझे, मैं उनके किसी बच्चे के लिए इसको मैं सब समय पर जानना चाहता हूँ। कुछ लोग कुछ उल्टा भी समझ रहे हैं, मैं उसको कुछ नहीं कहता, मैं उनका आदेश देखता हूँ, मैं इन लोगों के बातों पर ध्यान देता हूँ, उनका कल्याण हो। इसको मैं जो प्रचार कर रहे हैं उनका तो ये तो प्रचार कर रहे हैं, ये असदाचार की बातें हैं, मांस मछली खाना ही तो करना ही इसको छोड़ करके भगवान के प्रति विश्वास। जगह जगह में उन्होंने शिव मंदिर बना करके लोगों को विश्व में जब कहीं भी भाग से एक भाग लिया जाता है तो उसका हृदय जैसा के गौरव से फूल उठता है। इन विदेशों में भी हमारे विचार यहाँ पर मंदिर हैं और हमारे विचारों का कृष्ण का आदर हो रहा है। ये सब आज वो नहीं जाते, प्रचार नहीं करते तो हमारे विश्व में कोई स्थान नहीं। गरीबी की दृष्टि से और तकनीकी के विषय में इंजीनियरिंग के विषय में बुद्धि के विस्तार में जीत वाले हमसे बहुत सुंदर हैं। बस एक यही चीज है हमारी संस्कृति का, जो विश्व को कोई लोग भी इसके लिए खास के ऋषियों के यहाँ हम लोग यहाँ पदानत होने के लिए बात है। इसको हमें बड़े बड़े इलेक्चुअल जेंट्स हैं कहो, इन्हें से विश्व में कैसे प्रचार कर रहे हैं। किस हम लोगों के सामने आते हैं सब बेचारे, ऐसे लगते हैं कि बेचारे हम लोगों के चरणों में खेल रहे हैं। गंभीर प्रश्न करते हैं और हम लोग उसको, ये हमारी संस्कृति का एक धरोहर हम लोगों के पास है। हम लोग के रक्त रक्त में अधिक साधना की भी जरूरत नहीं है हम लोग, क्योंकि वो लोग भी बुद्धिमान होते हैं जी, उन चीजों को उनके रक्त में स्वभाव में आना जरा कठिन। जैसे भी उसमें राजनीति रहेगी कुछ न कुछ बात रहेगी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर इन सब चीजों से दुख तो सबकी समय उनका बहुत रही थी। और वही हमारे गुरु जी की वजह से गुरु महाराज जी को अपना बड़ा गुरु भाई मानते थे और उनके पति बहुत श्रद्धा रखते थे, इसलिए उनसे संन्यास ले लिया। और हमारे प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी साहब जिनके चरणों में उन्होंने देख किया था और उनके आदेश पालन करने के लिए भी समय कर। और कुछ दिनों में ही, थोड़े दिन ही लगे और कुछ समय में प्रचार किया। शंकराचार्य भी ऐसा नहीं कर सके, रामायण भी नहीं कर सके, मध्वाचार्य नहीं कर सके, कोई भी नहीं कर सके। यहाँ तक कि रामकृष्ण के विवेकानंद जी भी विदेशों में गए किंतु वहाँ की चीजों को उधार लेकर के यहाँ पर चलाया। वही वहाँ का बोतल ले आए, वो चीज ले आए, बोतल बदल करके दूसरा बोतल दे जाए, किंतु भाव वही रहा। हमारी हमारे लोग गए लाखों लोगों को, उन्होंने एक आदमी को इसकी कोई औरत उसको ले आए और ये लाखों लोगों को स्त्री पुरुष सब लोगों को आकर्षित करके मुंडन करा दिया सबका। स्त्रियों को भी तिलक लगा दिए और हरी बोल दोनों मिलकर लाइए मुझे तो तिलक ही है, विश्व का नक्शा ही उपक्रम बदल दिया भाव का। जो जाएंगे भी तक ये समझेंगे लोग, ऐसे नहीं समझ पाते। तो मैं कुछ उनके विचारों पर, हमारे शास्त्री के विचार जिसका वो प्रचार उन्होंने किया उसको उन्हें थोड़े से विचार कर, दो किशोर लड़के अपने किसी गांव के किसी गांव में, बंगाल के किसी गांव में के लिए गांव की सुनामी था और उसमें दो छोटे छोटे किशोर बच्चे अभी विद्या अध्ययन करके घर में बैठे हैं और बरामदे में बैठे हुए हैं और एक आदमी घबराया हुआ बहुत घबराया प्राण पर संकट पड़े हैं और इधर घर घूम रहा है। उसके भाव से वो उस बच्चे ने समझ लिया उन दोनों किशोरों ने ये कोई बात नहीं है, उनको बुलाया बड़े ध्यान से और बैठा है। अच्छा बतलाओ तो तुम कैसे घबराए हुए, बात क्या है? उसने कहा कि मैं ये बंगाल की राजधानी से आ रहा हूं और वहां का बादशाह हमारे ऊपर में नाराज हो गया, उसने कहा कि जल्दी से जाओ और करके से आओ, किंतु इसने ये नहीं कहा कि क्या करना है और कहां जाना है, बच्चे ही कहा जाओ जल्दी से आ जाना काम कर और नहीं तो तुम्हारा सिर नहीं रखते। हमने बड़ा सिर चुका है, मैं क्या करूँ क्या ले करके जाऊँ, इसलिए मैं वो राजधानी छोड़ करके नहीं खा करके इस गाँव में। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा ये तो बतलाओ उसमें बादशाह क्या कर रहा था? तो बादशाह एक बहुत बड़ी मीनार पर वो नया बना हुआ था, उस पर बैठा था, क्या कर रहा था? देखभाल कर रहा था। तो वहां पर क्यों गया था? तो इसलिए गया था उस मीनार को देखने के लिए पूरा बन गया कि नहीं, और मिस्त्री साथ में था जो एक मिस्त्री था इंजीनियर जो बनवा रहा था जो बना रहा था वो साथ में था। उस मिस्त्री ने से कहा बहुत सुंदर बना है, तो तुम बहुत अजीब सुंदर बनाया, अजय सुंदर हजीब आज्ञा हो तो मैं इससे अच्छा भी बना सकता हूँ, तुम इससे भी अच्छा बना सकता है, अरे इसको पकड़ करके और मीनार से गिरा दो और उसको मीनार से लेकर के गिरा दिया, ये तो इच्छा भी बना देगा अच्छा कभी तो होगा कि बादशाह से जैसा बनाया उसे भी अच्छा बना दिया, इसलिए उसको अपनी बराबरी न हो इसलिए देश के कारण उसको गिरा दिया। वो तो मर गया और हताशी साथ हमारे ऊपर में बोला है जल्दी जाओ जल्दी आना, मैं जब तुम्हारे फरता जब एक मिनट देखिए तो कौन मार डालेगा, इसने भाकर से सुना अब जाऊं तो कैसे लेकर के जाऊं, मैं अच्छा ये बात करूं इस स्थान पर सबसे अच्छा राजनीति राज का काम करने वाला बहुत ही अच्छे व्यक्ति एक्सपर्ट मैं नाम बतला देता हूं, इस नाम के व्यक्ति को दो आदमी को लेकर के चले, वो लेकर के चला गया। बादशाह ने देखा बादशाह के पास में अदावत भी किया, देखकर के हंस करके बोला तुम चला गया हमसे पूछा नहीं जैसे क्या करना था, तो कहां से ये कौन से व्यक्ति हैं जिनको ले आए, तो ये राजनीति है। तो वो और हटा करके हंस दिया, अरे हमको तो इसी की जरूरत है, मैंने तुमसे कहा नहीं ये पूरा भी बना नहीं, इसलिए हमको बनाने की जरूरत थी और तुम सीख ले आया था, तुम बहुत बुद्धिमान है। अजीब मैं बुद्धिमान नहीं, जो किशोर बालक वहां थे उन लोगों ने हमको कहा तो जाओ तुमको ले आओ, तो वो चला गया और उन दोनों को वहां पर गया। ये कौन थे? रूप और सनातन दोनों। साथ ही साथ में कुछ न देखा न कुछ किया, देखा कि तो अरबी फारसी हिंदी बंगला संस्कृत समस्त भाषाओं के पारंगत ये दोनों बच्चे हैं, बस उनको अपना प्रधानमंत्री एक को बड़े को रखा और एक छोटे को रखा अपना प्राइवेट सेक्रेटरी जो उनको नहीं और सारे राज्य को ये लोग चलाने लगे और बड़ी खुशी के साथ निकला। उनका नाम बदल दिया, बड़े का नाम रख दिया साकर मल्लिक खां और दूसरे का नाम रख दिया दबी खां। एक और भाई थे उनका अनुपम नाम था, उनको वही रहने दिया और उनको अर्थमंत्री बना दिया, किसी वो भाई मिलकर के राज्य करा। बाई चांस चैतन्य महाप्रभु वहां पर भूखे धाम से आए और उनके संग में उनका एकदम सब कुछ परिवर्तन हो गया, जीवावस्था में अब राज्य का नहीं लगता, बड़े बड़े पंडितों के साथ में रहते और बड़े बड़े यहाँ के जो विद्वान थे बंगाल भर के, उनकी सभा में श्रीमद भागवत गीता इत्यादि सब समय लेकर महाप्रभु से चले आए, इनके मन को भी लेते आए। ये लोग सब समय चिंता करते थे कि महाप्रभु कहाँ पर किस रूप में है, हम उनसे मिले। एक दिन ये सभा में बैठे हुए थे पंडितों की और बादशाह वहां पर पहुंचा, बोला मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूँ, मैं जो डकैती करता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, राज्य इत्यादि बढ़ाता हूँ, लोगों को कष्ट देता हूँ और राज्य संभालना तुम ही करते हो दोनों भैया, और तुम दोनों स्वरूप को देखता हूँ, जाने कहाँ चला गया प्राइवेट सेक्रेटरी, और तुम हो तो तुम राज्य में अब आते नहीं हो, काम नहीं करते हो, तुम ये तो दिन रात अपना ये पुराण जैसी अपनी भागवत को लेकर के तुम देखता हूँ, तो हमारा क्या होगा, जल्दी से चलो हमारे साथ और तुम राज्य का संभालो। उन्होंने कहा राजा मोरे प्रीति करे मोर बंधन, राजा मुझे प्रीति करता है ये मेरे लिए बंधन है, स्त्री मोरे प्रीति करे मोर बंधन, पिता मोरे प्रीति करे मोर बंधन, प्रजा मोरे प्रीति करे मोर बंधन, समझ रहे हैं ना, सर 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 ये संसार की प्रीति मोह है, आसक्ति है, प्रीति है, ये विकृत रूप है, किस चीज का भगवान के प्रति जो हमारा होना चाहिए प्रेम उसके लिए विकृत है, अभी ये मोह और आसक्ति के रूप में है, इससे हम नीचे चले जाएं, और भगवान के यही प्रति यदि विकृत है ये शुद्ध होकर के भगवान पर लगाई जाए तो ये संसार बंधन से दूर होकर के हम नित्य काल के लिए सुखी और शांति। उन्होंने कहा कि हमारे साथ में चलो, इच्छा पर मैं आक्रमण करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाता, आप देवताओं को नष्ट करेंगे, मूर्तियों को तोड़ने के लिए जा रहे, और सब लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनेंगे, इस अभियान में मैं नहीं जा सकता, इनको जेल में बंद करके और चला गया। रूप जी पहले ही महाप्रभु जी के पास में आए, वो महाप्रभु जी जा रहे हैं झंडा बन गए और कुछ ही दिन रहे वृंदावन, समस्त उत्तर भाग को उन्होंने भक्ति की धारा वहां पर बहाई, सब लोगों को करीब करीब वैष्णव कर दिया, सभी लोग कृष्ण नाम करने लग गए, और वही बात वहां पर बहुत अंशों में एकदम दब गया, और सब जितने से विचार वो ऐसे हो गए, महाप्रभु ने थोड़े दिनों में वृंदावन में रह करके एकदम प्रेम का वह भाव उनके अंदर में प्रकट किया, जो सब लोग समझ रहे थे ये सचमुच में कृष्ण के बिना दूसरे में ये संभव बन गया। किरणों को देखते और गले से लग जाते, किरण किरण को देख करके दौड़ करके आते, सभी लोग उनके प्रेम प्रवाह में डूबने लगते। लोगों ने देखा कि यहाँ पर रहने से ये कभी जमीना में कुछ जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, इसलिए उनको चलाती चतुराए थे उनके संगीन साथियों ने, काज पूरी ले जाने नहीं लगता, एक दिन यहाँ वृंदावन का एक एक कारण इनको कृष्ण से उन्माद में और उन्मादित कर रहा है, सभी ये उनको उद्दीपना जगा रहे हैं। एक मैया का पुत्र मर गया, उसके सामने उसी का यदि कपड़ा रख दिया जाए तो मैया क्या करेगी, रोने लग जाएगी, उसके खिलौने मैया के सामने रख दो, उसी तरह से महाप्रभु के आगे वृंदावन की एक एक भूमिकाएं कृष्ण का समाचार देती है और भावों की उद्दीपना जगाती है, इसलिए महाप्रभु वहां पर स्थिर नहीं करते, प्रेम के प्रवाह में कभी हा कृष्ण कहते हुए रोने लगते। इस तरह से उनके साथी लोग जब लौटाने लगे तो जब प्रयाग में आए तो रूप जी छोड़ करके आ रहे थे, कैसे आ रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ कमाया सबको उन्होंने लेकर के आधा लोगों को दान कर दिया और आधा का आधा अपने परिवार वालों को दिया, जिसमें जीव गोस्वामी भी थे, परिवार के पोषण के लिए वो बहुत काफी था, और एक जो चौथाई भाग रहा उसको लेकर के बनियों के यहां जमा कर दिया, जहां पर सनातन गोस्वामी जेल में बंद थे,
और कहा कि जरूरत का पड़ने पर इस धन को दे करके और उनको बंदी तारा से छुटाना है। ये कह करके वो चले आए और महाप्रभु जी वृंदावन से लौट रहे हैं, प्रयाग में इनसे भेंट हुई। रूप 10 दिन यहाँ पर प्रयाग में रहे और उनको जो शिक्षाएं दी। हमारे इस संस्कृति के उज्ज्वल नक्षत्र उपदेश है। भागवत में भी एक जगह नहीं मिलेगी, गीता में भी एक जगह नहीं मिलेगी, वही हम लोगों के विचार सिद्धांत। 10 दिन के बाद में रूप को वृंदावन भेज दिया और जब वहां से पैदल आ रहे हैं तो सनातन गोस्वामी ने 5,000 असर्धियां लेकर के बंदी चाला के जो जलर होता है उसको दे, वो इन्हीं का लगाया हुआ काम में था, इन्होंने उसको नौकरी दी। अजय भाई देखो हमारी सहायता करो, मैंने तुम्हारा उपकार किया तुमको नौकरी मैंने रखी, तुझे तुम हमारी कुछ सहायता करो, तुझे क्या सहायता करूँ, देखो तुम्हें जेल में बंद पड़ा हूँ मैं, अभी सफीर बनकर के मक्का मदीना चला जाऊंगा, इस देश में नहीं रहूंगा, इसलिए तुम हमारी सहायता करो। मैं कैसे करूँ, अभी बस आया राजीव जिले और हमको फांसी पर चढ़ा देगा। उन्होंने 5,000 के बदले में और 2,000 और दे दी, 7,000 हो गया। अब विचार करने लगा कि लूं कि न लूं, सुनूं कि न छोड़ू, तो बेचा भी चिंतू मिंतू है। उन्होंने और 3,000 मिला करके 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उसके सामने में ढाल दी। अब उनका लाल टपकने लगा और उसको किसी प्रकार से चेत नहीं कर सका। सोचा जी से ये 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तो अपने 10 जीवन में भी नहीं कमा सकता, और मान लिया कि हमको जेल भी जाना पड़े, यदि मरना भी तो मरना तो है, एक दिन हमारे बच्चे तो बड़े दुनिया करके इसका उद्भव करेंगे, ठीक है, लालच आ गया। और उन्होंने उसको सनातन गोस्वामी से पूछा कि आपको बतलाइए आप तो मंत्री थे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। कहा देना कि मैं उनको एक दिन बंदीशाला से उनको कटी कराने के लिए गंगा के घाट पर ले गया और वो हत्याचरी और बेड़ी के समीप थी, कटी करते करते पास ही में नदी बह रही थी और गंगा में वो गिर गया और वहीं पर मर गया, उसका पता ही नहीं लगा कि लाश की डर गई। तो उसने ऐसा ही कर दिया होगा। और ये उस गंगा को नौका से कुछ पैसा उठा दे करके लोगों को और चले आए। उस पास भीषण महा जंगल जिसमें बाघ गरजते हैं, जंगली हाथी हैं, जिसमें लुटेरे और डकैत लोग चिक करते रहते हैं बिगड़ जंगल में, उनके पास एक ज्योतिषी है। विचार करके कहा जिसे दो आदमी आ रहे हैं, एक व्यक्ति है उसका एक नौकर, और नौकर के कपड़े के खूंटे में वो 8 सोने की मोहरें हैं, बस लालटेन लेकर के उनके पास में अपने आदमियों को भेज दे, जाओ उनको ले आओ और रात में खूब आदर करके खिलाओ पिलाओ, और जब सो जाए तो उन दोनों को काट करके और पैसे दे दे, ये पूरी व्यवस्था हो गई। उनको बुला करके लोग ले आए, उसके बैठे लोग लेकर के उनको खूब आदर किया। सनातन गोस्वामी जी कहेंगे थे मैया से यदि अधिक कोई प्रीति करती है कोई औरत तो उसको डाइन समझना, प्रीति कर रही है किंतु मैया से भी अधिक तो डाइन समझो, कोई ऐसे ही बिना कारण वो कोई प्रीति नहीं कर सकता, कोई कारण जरूर है। क्या कारण, लोगों का कारण अधिकतर अर्थ से जुड़ा होता है, मालूम होता है कि हमारे नौकर के पास में, हमारे पास तो नहीं है नौकर के पास में कुछ है। मैंने उनको कहा कि भैया ये बतलाओ जो तुम्हारे पास कुछ है, जरूर है तुम्हारे पास, क्या है। तो मेरे पास में 7 सोने की असर्थियां हैं, वो आपकी सेवा के लिए रखा, अरे ठीक है जल्दी से दे दो ये करके। और उस जो डकैतों का सरदार था उसके सामने रख करके बोले हमारे पास में ये था, आप अब जैसा उचित समझ रहे हैं। तो हंसने लगा था कि आज तुमने हमको महापाप से बचाया, आज यदि नहीं दिया होता तो दोनों को हम लोग खिला पिला करके काट करके इसको ले लेते, अब देखो हमको रुके कि तुमसे जरूरत नहीं है, तुम बड़े सज्जन व्यक्ति हो, तुम क्या चाहते हो बतलाओ। इतनी हिदायत देते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको ले लें, दूसरे फिर हमको मार डालेंगे, इसलिए आप कृपा करके इसको ले लीजिए और हमको इस जंगल को पार करा दीजिए पहाड़ी से। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, वो रख लिया था और बोला उनसे कानों में चुपके से, तुम्हारे नौकर के पास में एक और बच रहा है, अब हमको जरूरत नहीं है, किंतु तुम जाओ। बस अपने चार व्यक्तियों को उनके सामने कर दिया और उसको पहाड़ी और जंगल पार करा दिया और वो वाराणसी के निकट में धीरे धीरे आए। जब वाराणसी में पहुंचे तो उस समय में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दे करके उनके अंदर में भगवत धर्म की प्रेरणा जगाकर सबको स्फूर्ति करा करके और यहाँ पर आए। उनके एक परिचित व्यक्ति थे भट्टाचार्य, जैसे तो बहुत विद्वान आदमी थे, चंद्रशेखर आचार्य। वहाँ पर उनके कुछ लगते थे, किंतु आए थे बंगाल के अधिकांश लोग अपनी अंतिम अवस्था के समय में काशी में करवट लेने के लिए आते। करवट लेना क्या? मरने को कहते हैं करवट लेना। अंतिम समय में वहाँ रानी से आने से करवट लेने से मुक्ति हो जाएगी, इस भावना से आते। तो वो भी इसी भावना से वहाँ पर आए थे, क्योंकि महाप्रभु जी के परिचित थे। उन्होंने देखा जैसे बड़ी भीड़ लग रही है, अब तक क्या अब तक घाट पर दिखाई, तो दशास्वमेध घाट पर मतलब, अरे ये तो नाई पंडित है, अब ये तो हो गए हैं सन्यासी, ये तो वाराणसी आ रहे हैं वहाँ से पूरी से या कहीं से, बस उनके पास में जाकर के परिचित किया और कहा जी हमारे घर में आ रहे हैं। उसी समय में वो आए।